ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। निर्वाचन के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी, 3,41,000 सुरक्षाकर्मी निर्वाचन में खटेगी। फागुन 20 गते रात 12 बजे से मतदान संपन्न न होने तक अत्यावश्यक बाहेक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन संचालन पर रोक लगाने की उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति की निर्णय और भारत और इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर जताई है सहमति। अब समाचार विस्तार से। इसी फागुन 21 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए देश भर के 165 क्षेत्रों में निर्वाचन का सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। प्रथम होने वाले निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली की ओर 4,11,53,000 मतपत्र 77 जिलों के 165 निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचाई जा चुकी है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी ने दी। मत बदर कम करने के लिए मतदाता शिक्षा संबंधी विशेष कार्यक्रम इसी फागुन 3 गते से जारी है। मतदाता शिक्षा फागुन 17 गते तक 753 स्थानीय तहों के 743 वार्डो में निरंतर संचालन होने की जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग ने फागुन 20 गते रात 12 बजे से मतदान संपन्न नहीं होने तक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन संचालन में रोक लगाने की जानकारी दी है। इसी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाने के संबंध में उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति की बैठक से मतदान के दिन अत्यावश्यक सेवा के सवारी साधन, कूटनीतिक नियोग के सवारी साधन और निर्वाचन के दिन में प्रयोग करने के लिए पास प्राप्त किए गए सवारी साधन बाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन संचालन पर रोक लगाने का निर्णय हुआ है। ये जानकारी आयोग के सह सचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने दी। मतदान के मिति से 7 दिन पहले से निर्वाचन के अंतिम परिणाम घोषणा न होने तक मादक पदार्थ बिक्री, वितरण तथा सेवन में देश भर प्रतिबंध लगाने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजने का निर्णय भी हुआ है। बैठक से निर्वाचन सुरक्षा के लिए 77 जिलों में मादक पदार्थ बिक्री, वितरण तथा सेवन में प्रतिबंध लगाने का निर्णय हुआ है। ये जानकारी आयोग ने दी है। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने आज नेपाल के लिए कूटनीतिक नियोग के प्रमुख और प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श के दौरान आयोग के सचिव कृष्ण बहादुर राउत ने कहा कि 21 गते होने जा रहे निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने के लिए आयोग के निकट रहकर आवश्यक सहयोग और समन्वय करने के लिए कूटनीतिक नियोग के प्रमुख और प्रतिनिधियों को आग्रह किया है। मिथ्या और भ्रमपूर्ण सूचना से निर्वाचन प्रक्रिया को ही असर पहुंच सकता है, इसलिए सत्य, तथ्य और यथार्थ सूचना बुझकर उसी अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना संप्रेषण करने का भी आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने इसी फागुन 21 गते संपन्न होने वाली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था में स्वास्थ्य कर्मी तैयारी अवस्था में रखने का निर्देश किया है। निर्वाचन के व्यवस्थापकीय कार्य आयोग से स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम निरंतर जारी होने की बात उल्लेख करते हुए आयोग ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन में सभी मतदान केंद्र में खटने वाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान करने वाले मतदाताओं को आवश्यक पड़ सकने वाले आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता सेवा संबंधित मतदान स्थल में उपलब्ध कराने की व्यवस्था मिलाने का निर्देश दिया गया है। ये जानकारी आयोग के सह सचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देनले निर्वाचन सुरक्षा स्थिति की जानकारी लेने के क्रम में आज धनगढ़ी स्थित सुदूरपश्चिम प्रीतना तथा सुर्खेत स्थित उत्तर पश्चिम प्रीतना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात प्रधान सेनापति सिग्देन ने सौंपे गए दायित्व को उत्कृष्ट ढंग से निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कमांड पोस्ट तथा निर्वाचन सेल के पदाधिकारियों से भेंट एवं संवाद भी किया। झपट पुरस्कार व्यवस्था समिति ने चार व्यक्तियों को झपट पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय किया है। समिति के अध्यक्ष अरुण राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक ने सनत रेग्मी और राजेंद्र थापा को प्रत्येक एक एक लाख रुपए की राशि प्रदान करने तथा डॉ गोपाल प्रसाद शर्मा और डॉ कांची महर्जन को संयुक्त रूप से एक लाख रुपए की राशि का झपट पुरस्कार देने का निर्णय किया है। आख्यान के माध्यम से नेपाली साहित्य के संवर्धन में विशिष्ट योगदान के लिए सनत रेग्मी को झपट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा तथा गीतकार जनरल राजेंद्र थापा को यज्ञ के सर पुरस्कार दिया जाएगा। नेपाली भाषा और साहित्य में योगदान के लिए डॉ गोपाल प्रसाद शर्मा और डॉ कांची महर्जन को सैन्य ध्वज नंद कुमारी शोध पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ऐसा समिति ने जानकारी दी है। देश के विभिन्न हिस्सों से मादक पदार्थों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय पुलिस समाचार कक्ष के अनुसार ईलाम, झापा, सुनसरी, नवलपरासी पूर्व और कैलाली से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से ब्राउन हीरोइन, गांजा तथा चिकित्सक की पर्ची पर ही मिलने वाली दवाइयां बरामद की गई है। संबंधित जिला पुलिस कार्यालय द्वारा नियमित रूप से चलाए जा रहे गश्ती अभियान के दौरान संदेह के आधार पर जांच करने पर उनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से 17 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन क्षेत्रों में दोनों के बीच सहयोग पर सहमति बनी है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, निवेश, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, संस्कृति, समुद्री विरासत, कृषि शामिल है। भारत में हाल में यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन समेत कई देशों के साथ एफटीए किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की निंदा की थी, लेकिन ये भी कहा था कि भारत के सुरक्षा हित सीधे तौर पर मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत गजा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने इसराइल की संसद कनेक्ट को भी संबोधित किया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। निर्वाचन के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी, 3,41,000 सुरक्षाकर्मी निर्वाचन में खटेगी। फागुन 20 गते को रात 12 बजे से मतदान संपन्न न होने तक अत्यावश्यक बाह्य के सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन संचालन पर रोक लगाने की उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति की निर्णय और भारत और इसराइल ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर जताई है सहमति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के समाचार समाप्त हुआ। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।